हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना कपड़े बदलकर निकली तो उसे भूख लगी थी, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं था, इसलिए वो नीचे नहीं गई। ज्योति के भेजे नोट्स और PDF देखकर उसने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बनाना शुरू कर दिए। उसने सोचा था कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और जो कुछ हुआ उसका सीधा या परोक्ष असर अपनी पढ़ाई, कॉलेज, परीक्षाओं और करियर पर नहीं पड़ने देगी। इसीलिए उसने कॉलेज में भी दोस्तों को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। सुनैना नोट्स बना रही थी कि सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। वो लिखना बंद कर नोटबुक बंद करके रख दी, कुर्सी से उठी और दरवाजे की ओर देखने लगी। मन में आदित्य की ही उम्मीद थी, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। आदित्य के ऑफिस से घर आने का समय उसे नहीं पता था। शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था और आदित्य किसी दिन भी समय पर घर नहीं आया था। कभी कभी तो वो आता ही नहीं था या सुनैना के सोने के बाद आ जाता था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि आदित्य के आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। ये उसके मूड पर निर्भर करता है। जब मन करता है वो आता है और जब मन करता है चला जाता है, जैसे आज सुबह अचानक चला गया था। उसने सुनैना के पूछने पर भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रही है। ये बात सुनैना को खल गई थी। ये सोचते हुए सुनैना दरवाजे की ओर बढ़ी। आदित्य सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे की ओर आ रहा था। उसके कदम हमेशा की तरह लड़खड़ा रहे थे। सुनैना ने नीचे देखा तो रवि दरवाजे से जा रहा था, शायद आदित्य को छोड़ने आया था। आदित्य ने आज भी काफी ड्रिंक कर रखी थी। सुनैना ने दरवाजे से थोड़ा आगे आकर ये सब देखा। आदित्य को उस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई वापस अपने कमरे में आ गई। अब ऐसी हालत में क्या बात करूंगी मैं इससे, क्या पूछूंगी मैं और क्या बताएगा ये। ठीक ठाक गया था सुबह घर से, फिर पता नहीं कौन सा सदमा लग जाता है दिन भर में ऐसा कि उसी तरह होश में घर वापस नहीं आया जाता इस इंसान से। क्या है भगवान जी, आपको भी मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या? अच्छा, अब ऐसा क्या कर दिया भगवान जी ने तुम्हारे साथ जो उन्हें कोस रही हो यहाँ ऐसे खड़े होकर? सुनैना के पीछे से कमरे में आते हुए आदित्य ने उसकी आखिरी लाइन सुनकर पूछा। इसे कोसना नहीं, शिकायतें करना कहते हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? तुम्हारे पास तो इससे भी बेहतर तरीका है ना सब कुछ ठीक करने का। सुनैना आदित्य की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसके शराब पीने पर ताना मारती हुई बोली। कोई मौका नहीं छोड़ती है ये लड़की जरा जरा सी बात पर ताना मारने का। सुनैना की बात सुनकर आदित्य धीमी आवाज में बुदबुदाया। क्या कहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आदित्य के इस तरह बोलने पर सुनैना उसके सामने आकर पूछी। कुछ नहीं बोलना मुझे जोर से, और हटो सामने से, मुझे चेंज करने के लिए कपड़े निकालने हैं। सुनैना को एक हाथ से किनारे करते हुए थोड़ा तेज आवाज में बात बदलते हुए आदित्य बोला और अलमारी की ओर बढ़ने लगा। ये तो नहीं बोल रहे थे तुम। अच्छा ठीक है, तुम हमेशा बोलते हो ना कि तुम पीने के बाद भी होश में रहते हो, तो फिर मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। बता दो मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी इन सब के बारे में सोच सोच कर। सुनैना अलमारी के दरवाजे के सामने आकर खड़ी होकर आदित्य से पूछते हुए बोली। क्या सोचती रहती हो तुम, और कौन से सवाल? मुझे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना, और अब हटो भी सामने से और मुझे अलमारी खोलने दो। आदित्य सुनैना की एक बांह पकड़कर उसे हटाते हुए बोला। शायद वो समझ रहा था कि सुनैना क्या पूछना चाह रही है और किन सवालों से बच रहा था। नहीं, मैं नहीं हट रही यहाँ से। पहले तुम बताओ मुझे कि आखिर क्यों, क्यों तुमने मुझसे ये शादी की, जबकि तुम तो मुझसे पति जैसा कोई बर्ताव भी नहीं करते और ना ही कोई हक जताते हो। आखिर ये कैसी शादी है और क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? क्योंकि जितना अब तक मैंने समझने की कोशिश की है उस हिसाब से ये शादी और हमारा रिश्ता दोनों ही बिल्कुल भी सामान्य तो नहीं है। और ऊपर से तुम्हारा इतना ड्रिंक करना, क्यों करते हो तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक? किस बात का दुख है तुम्हें? किसे भूलने की कोशिश में लगे रहते हो क्या? और कौन हो तुम आदित्य, बताओ मुझे। अब अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर ही लिया है तुमने मुझे, तो फिर पूरी तरह से शामिल करने में क्यों कतरा रहे हो तुम? इतनी बातें, शिकायतें, मन में जो कुछ था वो सब एक साथ बोलते बोलते सुनैना रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ के साथ आंसू भी थे। आदित्य उसे इस तरह देख नहीं पा रहा था। उसने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन सुनैना दोबारा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके कोट का कॉलर पकड़कर फिर से पूछते हुए बोली। आदित्य, प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो प्लीज, किसी सवाल का जवाब तो दो मुझे। इतना बोलती हुई सुनैना रोती हुई जमीन पर गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने उसे थाम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आदित्य के इस तरह गले लगाने पर सुनैना को बहुत अच्छा और अलग एहसास हुआ। आदित्य के इतने करीब आकर उसे बहुत सुकून महसूस हुआ तो वो भी रोते हुए उसके गले लग गई, ये भूलकर कि वो सारी शिकायतें आदित्य से ही कर रही थी कुछ देर पहले तक। स्टॉप इट, चुप हो जाओ, क्या क्या कर रही हो तुम, क्यों क्यों रो रही हो इस तरह से, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफें दे रही हो, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता, शांत हो जाओ, प्लीज प्लीज रोना बंद करो सुनैना। आदित्य सुनैना को कसकर गले लगाए हुए उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में सुनैना के लिए फिक्र और प्यार साफ दिख रहा था, लेकिन सुनैना आदित्य का कोट कसकर पकड़कर उसके गले लगी बस रोए जा रही थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना रोना क्यों आ रहा है। आखिर क्रमशः